الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا تھا کہ آج یعنی بروز قیامت ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے منہوں پر مہر لگ جائے گی، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ظہور اس انداز میں بھی ہوگا۔ اگلی آیات میں جو ابھی ہم تلاوت کریں گے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی آخرت میں تو کفار کو عذاب دے گا، سزا دے گا، لیکن اگر وہ چاہے تو دنیا کے اندر بھی کافروں کو سزا دینے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر اگر سزا دینی ہو تو وہ کس انداز میں دے سکتا ہے، اس کی ایک صورت کو بیان فرمایا اور پھر اس کے اوپر آگے دلیل بیان کی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، ان کافروں کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر وہ جلدی سے راستے کی طرف جاتے تو کہاں سے دکھائی دیتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹتے۔ ارشاد فرمایا کہ جن آنکھوں سے حق کے دلائل دیکھنے کے باوجود یہ لوگ حق قبول نہیں کرتے، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، یہ جیسے رخسار ہیں، گال ہیں، بالکل پلین ہیں، سیدھے ہیں، اسی انداز میں ہم ان کی آنکھیں بھی کر دیں، مٹا دیں ان کی آنکھیں، ان کو کچھ نظر نہ آئے، اور تو یہ جلدی سے راستے کی طرف دوڑیں لیکن ان کو راستہ نہ ملے، جیسے اچانک آنکھیں جو ہے وہ دیکھنا بند کر دیں، چھوڑ دیں آنکھیں دیکھنا اگر، تو آدمی گھبراہٹ کے اندر جو ہے وہ فوراً بھاگتا ہے راستے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی آنکھوں کو ایسا مٹا دیں کہ نہ کھلیں اور نہ ان کو راستہ نظر آئے، اور پھر فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں ان کی جگہ پر ہی جہاں یہ کھڑے ہیں موجود ہیں وہیں پر ہم ان کی صورتوں کو مس کر دیں، ان کے چہروں کو بگاڑ دیں، ان کی شکلیں بگاڑ دیں، اور ان کا وہ حال کریں کہ نہ تو یہ آگے بڑھ سکیں اور نہ یہ پیچھے لوٹ سکیں، کہ ان کی شکلیں بگڑ جائیں، ان کے اندر قدرت ہی نہ رہے کہ یہ کسی طرف ڈھنگ سے جا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری یہ قدرت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو آثار اور مظاہر ہیں ان میں تو ایک بہت ہی چھوٹی سی یہ چیز ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے بہت بڑی تخلیق ہے، نظام کائنات کا جو ہے وہ ایک بڑے، اس میں بڑی بڑی تبدیلی آنا، بڑے بڑے سیلاب آ جانا، بڑے بڑے جو ہے وہ زمین کے خطوں کا زلزلے کی وجہ سے پھٹ جانا، کہاں قدرت کے وہ آثار اور علامات جو بہت بڑے، اللہ کی قدرت کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں لیکن ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا جو ظہور ہے کہیں بہت شدت کے ساتھ ہے اور کہیں بہت تھوڑے انداز کے اندر ہے۔ تو یہ جو آنکھوں کا مٹا دینا، چہروں کا بدل دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہمارے سامنے جو مظاہر ہیں ان کے اعتبار سے تو معمولی سا کرشمہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اب بندوں کی جسمانی تبدیلی پر عذاب دینے پر قادر ہونے کی ایک دلیل بیان کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے وجود کے اوپر ہی غور کریں، ہم انسانوں کے وجود پہ غور کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لمحہ بلمحہ ان کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہے۔ ایک وقت کے اندر انسان کیا ہوتا ہے، پھر کیا بن جاتا ہے، کہاں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کہاں وہ جوان ہوتا ہے، کہاں وہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے، کہاں وہ جوان مرد ہوتا ہے، کہاں اس کا جسہ بن جاتا ہے لہیم شہیم، لمبا چوڑا اور بدن اس کا طاقت سے انرجی سے بھرپور، اور کہاں دوبارہ اس کا پہیہ الٹا گھومنا شروع ہو جاتا ہے بندے کا، और फिर दोबारा वही कमज़ोर नहीफ नज़ार, चल नहीं सकता, चीज़ नहीं पकड़ सकता, दिखने में मुश्किल, सुनने में मुश्किल, बोलने में मुश्किल, आज़ा साथ नहीं देते, बाज़ औक़ात बदन पर राशा तारी है। तो ये तग़य्युरात हैं जो इंसान के वजूद और उसके जिस्म के अंदर हम अपनी आँखों से मुशाहदा करते हैं। तो अल्लाह ताला उसी को दलील के तौर पर बयान फरमाता है, इरशाद फरमाया, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क अफला याकिलून, और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं तो उसे पैदाइश में उल्टा फेर देते हैं तो क्या वो समझते नहीं। फरमा जिसे लंबी उम्र देते हैं तो पैदाइश में उल्टा फेर देते हैं। पहले इंसान कमज़ोर होता है, उसके बदन में वो ताकत नहीं होती, उसके आज़ा में वो ताकत नहीं होती, उसमें बीमारी को बर्दाश्त करने की, बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ताकत बढ़ती रहती। एक वक्त आता है कि वही चीज़ कि जो बचपन में उसको आती तो शायद मर ही जाता, जवानी के अंदर उसी को बड़े हिम्मत और हौसले के साथ बर्दाश्त कर लेता है, गर्मी को, सर्दी को, बीमारी को, तकलीफ़ को, दुख को, गम को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब जवानी ढलती है और मुअम्मर आदमी हो जाता है, वह मन नुअम्मिर हो, इंसान मुअम्मर हो जाता है, ज़्यादा उम्र का हो जाता है, तो जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतनी ही कमज़ोरी बढ़ती जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस खालिक व मालिक की कुदरतों के ये शाहकार और कुदरतों के नमूने तुम अपनी आँखों से दिन रात देखते हो, तो उसकी कुदरत से क्या बईद है कि जो उसने अजाब तुम्हें बताया कि चाहे तो तुम्हारे चेहरे बदल दे, तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दे, तुम्हारी शक्लें बदल दे, तुम्हारी आंखें मिटा दे, तो उसके लिए क्या मुश्किल है। तो फरमाया अफला याकिलून, तो क्या लोगों को अकल नहीं, क्या लोग समझते नहीं हैं कि तग़य्युरात पर कादिर खुदा दूसरी वो तब्दीलियाँ कि जो आम तौर पर नहीं होती उनके करने पर भी कादिर है। अब इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुफार एक बहतान लगाते थे, आपकी तरफ झूठ मंसूब करते थे, अल्लाह ताला ने उसकी नफ़ी फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ है और जवाब अल्लाह ताला दे रहा है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबी है कि कुफार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करते थे, अल्लाह ताला उनको जवाब देता था। जैसे सूरह तब्बत यदा है, अबू लहब ने कहा था कि मुहम्मद के हाथ तबाह हो जाएँ, तो अल्लाह ताला ने उसके रद के अंदर फरमाया तब्बत यदा अबी लहब मतब, अबू लहब के हाथ तबाह हो जाएं, और वो तबाह हो ही गया। तो कुफार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, आप पे इल्जामात लगाए, उनका जवाब अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता था। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबियत की शान है अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में। तो यहाँ जिस चीज़ का बयान है वो इरशाद होता है, वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी लह इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुम मुबीन, और हमने नबी को शेर कहना ना सिखाया, और हमने नबी को शेर कहना ना सिखाया, और ना वो उनकी शान के लायक है, वो तो नहीं मगर नसीहत और रोशन कुरान। इस आयत मुबारक का मफहूम समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत से लोग गलत मतलब भी लेते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की वसअत का भी इनकार करते हैं। मसला यूँ है कि ये आयत मुबारक क्यों नाजिल हुई, एक दूसरी बात ये कि बात है शेर की कि हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम को शेर कहना ना सिखाया, लेकिन उसके मुत्तसिल कुरान का जिक्र कर दिया, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुम मुबीन। तो ये दोनों में मुनासबत क्या है, नबी पाक अलैहि सलाम को शेर कहना नहीं सिखाया बल्कि ये कुरान है, जिक्र है, दोनों में मुनासबत क्या है। तो देखें उससे पहले इसका जिसकी इसका बैकग्राउंड है वो समझे। कुफार, कुफार मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाते। कुफार ने जब देखा कि नबी पाक अलैहि सलातो सलाम जो कलाम पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, बड़ा मुअस्सिर है, दिलों में असर करता है, दिलों की काया पलट देता है, जो लोग आपसे कुरान सुनते हैं उनके दिलों के ऊपर असर होता है, और नतीजा ये था कि लोग कुफ्र को छोड़कर इस्लाम की तरफ आ रहे थे, शिर्क को छोड़कर तौहीद की तरफ आ रहे थे। अब कुफार ने बारहा मंसूबे बनाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में वो क्या करें। अब उन्होंने बहुत मरतबा आपस में जो मीटिंग्स की, जो बैठे इकट्ठ किया, तो उसके अंदर एक बात उन्होंने कई मरतबा तय की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से चूंकि लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, तो हम इनको कोई ऐसी शख्सियत के तौर पे लोगों को बताते हैं कि लोग इनको गलत भी समझें, इनको गलत भी समझें और इनकी इनकी बातों में आने से भी जो है वो बाज आ जाएं, इनके कलाम की तासीर से भी बच जाएं। तो अब क्या था, उस जमाने के अंदर बुनियादी तौर पे तीन तरह के लोग इस तरह की चीज़ों में मारूफ थे कि जिनकी बातों में बड़ा असर होता था। नंबर एक, जादूगर, क्योंकि जादूगर तो लोगों के सामने ऐसा कुछ करके दिखा देता था ना कि लोगों पे उसका बड़ा इम्पैक्ट होता था, लोग उसकी तरफ मायल हो जाते थे, उसके कायल हो जाते थे। तो एक तो जादू था, दूसरा था कहानत। कहानत क्या थी, कहानत ये जैसे आजकल नजूमी होते हैं, गैब की बातें बताना, गैब की खबरें देना, फला वक्त में ये होगा, वो ऐसा हुआ था। तो काहिन भी अपने मुख्तलिफ जो है वो बातिल उलूम की वजह से कुछ ना कुछ बातें इस तरह की बता दिया करते थे, जिसमें एक आध सच्ची थी, 150 झूठी भी हो जाती थी, लेकिन कोई ना कोई सच्ची भी निकल आती थी। अब वो जो दुरुस्त होती थी लोग उसकी वजह से कायल हो जाते थे। तो एक था काहिन। तीसरे नंबर पे लोग थे जो जिनकी बातों से लोग मुतासिर होते थे, वो शुआरा, शायर। इतना खूबसूरत कलाम लिखते थे, उनका कलाम इतना जानदार होता था कि इंसान तो इंसान जानवरों पर असर करता था। ख़ास तौर पर अरब के शुआरा के जो कलाम है उसका नमूने बड़े आला दर्जे के और बड़े फसीह बलीग हैं। अब अगर तो कुफार ये कहें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जादूगर हैं, ना काहिन हैं, ना शायर हैं, ये तीनों की नफी के बावजूद भी अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातें असर कर रही और आपका कलाम जो कुरान की सूरत में है वो असर कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर बातिल नहीं है बल्कि खुदा के रसूल हैं और आपका जो कलाम है वो खुदा का कलाम है यानी कुरान है। तो कुफार ने मुख्तलिफ मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर यही तीनों इल्ज़ाम लगाए, कभी आपको जादूगर कह दिया, कभी आपको काहिन कह दिया, कभी आपको शायर कह दिया। अल्लाह ताला ने तीनों की कुरान में नफी की कि ना तो ये नबी जादूगर हैं, ना काहिन हैं, ना शायर हैं। तो कुफार बेसिकली जो कुरान की आयतें थीं, कभी इनको जादू कहते थे, कभी इनको कहानत कहते थे और कभी इनको शेर व शायरी कहते थे। और शेर व शायरी कहने से मुराद क्या होती थी, शेर व शायरी कहने से मुराद ये होती थी कि शायरों का तो अता पता ही क्यों नहीं कि कभी जनाब किसी की शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए तो मामूली सी शेख को न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कभी किसी की मजम्मत करना शुरू कर दी तो बड़ी ऊंचे दर्जे की भी चीज़ है तो उसको घटिया साबित कर दिया, कभी तखयलात की वादी में घूम रहे, कभी इधर भटकते फिर रहे, कभी उधर भटकते फिर रहे, ऊँटनी की शान बयान की तो ऊँटनी की शान के अंदर ही 500 शेर पढ़ दिए। तो शायरों का हाल ही कोई नहीं होता, कलाम बड़ा मौसर होता है, कलाम बड़ा मौसर होता है, लेकिन कलाम किज़्ब पर, झूठ पर, मुबालगा आराई पर, फजूलियात पर, लगवियात पर मुश्तमिल होता है। तो कुफार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम यानी कुरान, यहाँ जिस कलाम की बात करो वो कुरान, कुरान को कहते थे कि ये तो शेर व शायरी की बातें हैं। शेर व शायरी की बातें कहने से क्या मुराद, असल शेर नहीं, क्योंकि कुफार मक्का इतने बेवकूफ़ और जाहिल नहीं थे कि उनको शेर का और नसर का पता नहीं था। आखिर वो अपने ज़माने के फसीह बलीग लोग थे, उनके अंदर आला से आला दर्जे के शुआरा मौजूद थे, तो उनके तो हर बंदे को पता था कि भाई ये शेर है या नसर है। और कुरान शेर की सूरत हर किसने, इसकी कोई आयत बहुत लंबी है, कोई आयत छोटी सी है, तो इसको शेर कहना जो है ये तो एक बिल्कुल अपना मजाक उड़वाने वाली बात थी ना, कि अगर इसको हकीकी मानों में शेर कहते तो वो शेर बमाना शेर नहीं कहते थे, वो कहते थे कि ये शेर है, यानी जैसे शायरों के कलाम झूठ पर, गलत बयानी पर, तखयलात पर मुश्तमिल होते हैं, कुरान भी ऐसा ही कलाम है। लो जी मरने के बाद लोग उठ जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देंगे, फिर हमेशा जन्नत में रहेंगे, हमेशा जहन्नम में रहेंगे, या ये होगा या वो होगा। तो वो कहते थे ये ख्याली बातें, ये जन्नत की, ये मरने के बाद उठने की, ये ख्याली बातें हैं। तो वो इस माना में कुरान को शेर कहा करते थे। तो अल्लाह ताला ने काफिरों के उस इल्ज़ाम का रद्द करते हुए फरमाया कि हमने अपने महबूब को शेर नहीं सिखाया, جو قرآن ان کو دیا ہے، جو قرآن یہ پڑھتے ہیں، جو قرآن تمہیں سناتے ہیں، یہ شعر نہیں، ہم نے ان کو یہ شعر نہیں سکھایا، بلکہ یہ تو ذکر ہے، روشن قرآن ہے۔ تو اب غور فرمائیں کہ شعر سے مراد یہاں کیا ہوا؟ شعر سے مراد ہوا کہ کفار جو قرآن کو شعر کہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو یہ شعر نہیں سکھایا، یہ جو قرآن سکھایا ہے یہ شعر نہیں سکھایا، بلکہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو سراسر نصیحت ہے، روشن قرآن ہے۔ اب آپ دیکھیں، ابھی جو میں نے معنی بیان کیا، اس کے نتیجے میں جو پورا اس کا سیاق و سباق ہے اور جو پورا مفہوم ہے وہ کھل کے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جو کفار نے شعر کہا تھا وہ قرآن کو کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو نفی کی تو وہ قرآن کے شعر ہونے کی نفی کی کہ قرآن کلام کذب نہیں ہے، قرآن فضولیات اللغویات پر مشتمل نہیں، یہ تو عقل و حکمت کی باتوں پر مشتمل ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کی حکمت اور ہدایت پر مشتمل ہے، یہ تو نصیحت ہے، یہ تو روشن قرآن ہے۔ اب اس کی روشنی میں جو اس کا شان نزول ہے وہ بھی واضح ہو گیا، اور آگے جو شعر کی نفی کے بعد آگے قرآن کا بیان ہے، ان دونوں کے درمیان مناسبت بھی واضح ہو گئی۔ تو یوں جو ہے یہ اپنی پوری بات جو ہے وہ اپنی جگہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ یہ وما یم بغیلہ، ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شعر ان کی شان کے لائق ہے۔ اب جس مفہوم کے اندر میں نے پوری تقریر کی ہے، اس کے اعتبار سے معنی یہ بنے گا کہ یہ قرآن کو جھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کو تخیلات نہیں ہیں، یہ قرآن فضولیات اور لغویات نہیں ہیں، اور نہ یہ فضولیات اور لغویات اور جھوٹی باتیں نبی کی شان کے لائق ہیں۔ وما علمناہ شعرا وما ینبغی لہ، نہ تو ہم نے نبی کو جھوٹی فضول تخیل کی باتیں سکھائیں اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ جو ان کو سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ذکر ہے، روشن قرآن ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت سا مفہوم ہے جو بالکل اپنی جگہ پر منطبق ہو جاتا ہے، ورنہ ایک بڑا سیدھا سا سوال پیدا ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی کوئی شعر اس طرح لوگوں کو پڑھ کے سنا ہی نہیں کہ جن کے اوپر کفار آگے سے اعتراض کریں کہ دیکھو جناب یہ تو شعر پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو لہذا یہ تو شاعر ہوئے، اور ان کو یہ، ان کے سامنے تو سرکار علیہ السلام تو قرآن ہی پڑھ کے سناتے تھے، تو وہ جو شعر کہہ رہے ہیں وہ قرآن کو تو کہہ رہے ہیں، جب قرآن کو کہہ رہے ہیں تو قرآن تو شعر ہے ہی نہیں۔ اور یہ تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ نثر میں اور نظم میں فرق ہوتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ نظم شاعری کے طور پہ نہیں ہے، اس کی آیات میں جس انداز کے اندر فرق ہے وہ کبھی بھی شعر و شاعری کے اندر نہیں ہوتے۔ تو کفار کا اعتراض قرآن پر تھا، قرآن کو وہ شعر کہہ رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کو اس کے اعتبار سے شاعر کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی۔ ورنہ جہاں تک شعر کا تعلق ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر جو ہے وہ بعض اوقات لوگوں کو سنائے بھی، جس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر اپنی زبان مبارک سے ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، شعر گوئی کا ملکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا، لیکن وہ علم نہیں ہے، وہ ایک فن ہے، وہ ہنر ہے، ہنر اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں ساری شاعری پڑھ لوں، شعر کے جتنے اوزان ہیں جو اس کے علم عروض کے اندر جو اوزان بنتے ہیں، اور پھر جو ان کی اس میں فصاحت و علم البدی کے قواعد ہیں، وہ میں سارے پڑھ لوں تو مجھے شعر کا علم تو ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ مجھے شعر کہنا بھی آ جائے اور میں شعرا کی طرح کلام بھی لکھنا شروع کر دوں۔ تو علم شعر اور ہے، اور ملکہ شعر گوئی یہ اور چیز ہے۔ یہاں جو نفی ہے وہ لی جائے تو ملکہ شعر گوئی کی ہے، یعنی شعر کہنے کا ملکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، اور یہ فن ہے، ہنر ہے، یہ علم نہیں ہے۔ لہذا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر علم ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، وہ آپ کو اپنی جگہ درست ہے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی چونکہ وہ آخر میں ذکر ہوا، تو اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی شان بھی بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ جو روشن قرآن ہے یہ کیوں ہے، کیوں نازل ہوا ہے؟ فرمایا تاکہ وہ نبی اسے ڈرائے، اس بندے کو ڈر سنائے جو زندہ ہو اور کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعیدیں ہیں وہ سنائیں, اور وعیدیں سنانے کا نتیجہ یہ کہ جس کے دل میں زندگی ہے, جس کا دل زندہ ہے, دل زندہ ہے سے مراد یہ ہے کہ مردہ نہیں ہو چکا حق قبول کرنے سے, بلکہ حق قبول کرنے کی رمق اس کے اندر موجود ہے, تو وہ زندہ دل آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائے. اور کافروں پر جو اللہ کے عذاب کی بات ہے وہ ثابت ہو جائے, اور ان پر حجت پوری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو آخرت میں عذاب دینا ہے وہ بغیر اتمام حجت کے نہیں دیا, بلکہ ان کو ان کی طرف اپنا رسول بھیجا, رسول نے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سنائی, پھر ان لوگوں نے نہیں مانا, تب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. اب اس کے بعد توحید پر استدلال, توحید پر جو دلائل ہیں ان میں چوپایوں کی تخلیق اور ان سے حاصل ہونے والے منافع کے ذریعے بیان کیا گیا. ارشاد ہوا, اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون ولهم فیہا منافع و مشارب افلا یشکرون. اور کیا انہوں نے نہ دیکھا, لوگوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں, ہم نے اپنے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں, اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے تابع کر دیا تو ان چوپایوں میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے لوگ کھاتے ہیں یعنی گوشت کھاتے ہیں, اور لوگوں کے لیے ان جانوروں میں کئی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں ہیں, تو کیا وہ لوگ شکر ادا نہیں کریں گے؟ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر ایک اور دلیل کو بیان فرمایا کہ جن چوپایوں سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں غور کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا. تو فرمایا کہ مما عملت ایدینا, ہم نے انہیں خود پیدا کیا, ہم نے اپنے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے. تو عملت ایدینا جو ہے یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی, کسی دوسرے سے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی شان خالقیت کے اعتبار سے ان کو پیدا کیا اور لوگوں کو اس کا مالک بنا دیا. اچھا, اب اللہ تعالیٰ اسی قدرت کی اگلی صورت بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ان چوپایوں کو لوگوں کے تابع کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے؟ اب دیکھیں, ہمارے سامنے دو طرح کے جانور ہیں, شیر بھی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ بکری بھی ہے. ایک وحشی جانور ہے, ایک گھریلو ہے, پالتو ہے, چپایا ہے. پیدا دونوں کو اللہ تعالی نے کیا اور دونوں کے اندر گوشت ہی ہے, دونوں کے اندر اسی طرح کی جو ہے وہ جسمانی وضع اور ہیئت ہے, لیکن اللہ تعالی نے ایک طرح کے جانوروں کو وحشی بنایا, دوسری طرح کے جانوروں کو چپایا بنا دی. جو چپائے ہیں وہ انسان کے تابع ہیں, گائے ہے, یہ بکری ہے, بکرا ہے, اونٹ ہے, یہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیے. اب اونٹ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کے تابع کیا, کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے, اتنا بڑا اونٹ, ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے اور اونٹ جو ہے اس کے پیچھے 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 چل رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے تابع کیا اس کا یہ حال ہے کہ وہ اونٹ ہونے کے باوجود ایک بچے کے تابع ہے. اور دوسری طرف آپ شیر کو دیکھ لیں, شیر کا وجود اونٹ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے, اس کا دسواں حصہ ہوگا وہ, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تابع نہیں کیا, انعام میں نہیں آتا شیر, وہ تو سبعون کے اندر آتا ہے, سبا کے اندر آتا ہے, جو ہے وہ خونخوار جانوروں کے اندر, درندوں کے اندر, تو شیر اپنے وجود میں چھوٹا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو تابع نہیں کیا انسان کے, تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہونے کے باوجود سینکڑوں انسانوں کو بھگا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور دلچسپ انداز ہمارے سامنے ہے کہ چاہے تو اونٹ جیسے بڑے جانور کو بھی انسان کے تابع کر دے, اور چاہے तो बल्कि शेर तो मैंने बड़ा कह दिया, भेड़िया उससे भी छोटा होता है। वो छोटा सा भेड़िया जो है वो ही इंसान के काबू नहीं आता, बल्कि इंसान को चीर फाड़ के रख देता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये हम हैं जिन्होंने ये चुपाए इंसानों के ताबे कर दिए, तो लोग इन पर सवारी भी करते हैं और इनके गोश्त से भी फ़ायदा उठाते हैं, इनका गोश्त भी खाते हैं। फिर इसके अलावा दीगर मुनाफे भी हैं, दीगर मुनाफे जैसे जो हलाल मादा जानवर है उनका दूध इस्तेमाल होता है, ऊँटनी का दूध है, बकरी का दूध है, और इसी तरह जो है वो गाय का, भैंस का दूध है, तो मशारिब है पीने के, जो है वो इसमें मुनाफे मौजूद है। और दीगर मुनाफे भी हैं, दीगर मुनाफे ये हैं, गोश्त है खाने में इस्तेमाल आता है, दांत है वो किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जाती है, हड्डियाँ किसी और चीज़ में काम आ जाती हैं, ये खाल है वो जनाब चमड़े की बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम आ जाती है, जूते भी बनते हैं, बैग भी बनते हैं, अब तो हज़ारों चीज़ें बनती हैं, हत्ता के भेड़ की जो ऊन है उस ऊन से कुछ और ही बनता है, उनसे दीगर चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यूँ जो है बल्कि अब तो साइंसी एतबार से तो जो जो उसमें से जनाब वो निकाला जा रहा है उसके एतबार से बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वाला हूँ फीहा मनाफिउ व मशारिब, कि इंसानों के लिए इन चुपायों में कई तरह के मुनाफे और पीने की चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला इन अपनी नेमतों को बयान करके इरशाद फरमाता है अफला यशकुरून, तो क्या लोग नेमतें देने वाले रब का शुक्र अदा नहीं करेंगे जिसने इतनी नेमतें अता फरमाई, कि जिनके ऊपर हमारी अक्सर बेशतर ज़िंदगी का मदार है, जिनसे हम लुत्फ़ानंदोज़ भी होते हैं, जिनके ज़रिए ज़िंदगी भी गुजारते हैं। तो जिस खुदा ने नेमतें दी हैं उसका शुक्र भी अदा होना चाहिए। इसके बाद अब शुक्र ना शुक्री, चूँकि शुक्र का बयान हुआ और उस शुक्र के अंदर हकीकत ना शुक्री के अंदाज के अंदर उसको बयान किया गया कि क्या शुक्र अदा नहीं करेंगे, मुराद तो यह है कि शुक्र अदा करें, लेकिन इससे यह भी समझ आया कि नाशुक्री करने वाले भी हैं। अब जो नाशुक्री है उसकी बदतरीन सूरत है कि खुदा के वजूद का इनकार कर दिया जाए या खुदा की शानों का इनकार कर दिया जाए, खुदा की वहदानियत का इनकार कर दिया जाए, ये नाशुक्री की बदतरीन सूरत है। नाशुक्री की और भी दर्जे, लेकिन ये नाशुक्री की बदतरीन सूरत है कि खुदा के साथ किसी और को शरीक कर दिया जाए। तो अब जिनको शरीक किया गया अल्लाह ताला उन्हीं की उन चीज़ों की मुसम्मत बयान फरमाता है। इरशाद फरमाया कुफार का जो बुतों से झूठी तवक्कुआत उन्होंने वाबस्ता की थी, तो उन तवक्कुआत वाबस्ता करने के बावजूद बुतों का क्या हाल है, पुजारियों का क्या हाल है, अल्लाह ताला वो बयान फरमाता है। इरशाद फरमाया वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युंसरून ला यस्ततियून नसरहुम वहुम लहुम जुंदुम मुहबरून, और उन्होंने यानी मुशरिकों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए कि शायद इन पुजारियों की मदद हो जाए, शायद इन मुशरिकों की मदद हो जाए, इन्होंने इसलिए और खुदा बना लिया अल्लाह के सिवा। अल्लाह ताला फरमाता है वो बुत झूठे खुदा इन मुशरिकों की मदद नहीं कर सकते, और वो तो खुद इनके लिए लश्कर हैं हाजिर किए हुए। ये जो जुमला है चूंकि इसके दो मफहूम बनते हैं, मैं दोनों को पूरे वजाहत के साथ अर्ज करता हूं। पहले तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मुशरिकों ने अल्लाह के अलावा दूसरे खुदा बना लिए, क्यों बनाए, लअल्लहुम युनसरून, ताकि इन मुशरिकों की मदद हो, मुश्किल के वक्त में वो झूठे खुदा इनके काम आ जाएं। तो मुशरिकों ने जो झूठे खुदा बनाए वो इसलिए कि मुश्किल के वक्त में ये काम आए। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो बुत हैं झूठे खुदा हैं ये तो इन काफिरों की मदद नहीं कर सकते। अब उसके बाद जो अगला जुमला है उसके दो मतलब, या तो इसका तर्जमा ये बनता है, मैं तर्जमे को थोड़ी सी वजाहत से अर्ज कर देता हूँ ताकि उसके मफहूम के ऊपर वो पूरा पूरा मुंतबिक, आयात के अल्फाज के ऊपर वो मुंतबिक हो जाए। फरमाया कि बुत इन काफिरों की मदद नहीं कर सकते, और ये पुजारी तो उन बुतों के लिए खुद हाजिर लश्कर हैं, यानी बुतों ने पुजारियों की मदद तो क्या करनी, बुतों ने मुशरिकों की मदद तो क्या करनी, ये मुशरिक तो खुद बुतों की हिफाजत पे खड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बुत कदे हैं, जहाँ पर बुत खड़े किए होते हैं, सजाए होते हैं, गाड़े होते हैं, वहाँ क्या होता है जी? उसकी सिक्योरिटी हो रही है, बुत की सिक्योरिटी हो रही। तो सवाल ये है कि बुत ने इन मुशरिकों की मदद करनी है, हिफाजत करनी है, या इन्होंने उसकी करनी है? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बुतों का हाल तो ये कि ये जो पुजारी हैं, ये जो मुशरिक हैं, जो उनसे मदद की तवक्को रखते हैं, वो खुद तो खुद उनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो बुत खुद जो है वो मजबूर हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं मुशरिकों की मदद के। तो जो खुद मोहताज है मदद के, वो उल्टा इनकी मदद कहाँ से करेंगे? तो फरमाया कि वहुम, और ये पुजारी, ये मुशरिक, लहुम, उन बुतों के लिए जुंदुन, लश्कर हैं, मुहदरून, हाजिर किए हुए हैं। तो ये तो मुशरिक उन बुतों के लिए खुद लश्कर बने हुए हैं, मौजूद लश्कर बने हुए, हाजिर लश्कर बने हुए कि उनकी हिफाजत करेंगे। तो लिहाजा बुत इनकी कहाँ से मदद करेंगे? ये तो गया एक मफहूम। दूसरा मफहूम, दूसरा जो तर्जुमा है उसके अतबार से फरमाया कि ला यस्तियून नसरहुम, वो इनकी मदद नहीं कर सकते, और वो बुत इन मुशरिकों के लिए लश्कर होंगे हाजिर किए हुए। अब क्या मतलब हुआ? अब मतलब ये हुआ, अल्लाह ताला ने और दीगर आयात के अंदर इस मफहूम को ज्यादा वजाहत के साथ बयान फरमाया, तो उसकी रोशनी में इस आयत का मतलब समझ आता है कि जब क्यामत का दिन होगा, मुशरिक भी जमा होंगे और बुत भी जमा होंगे। अल्लाह ताला बुतों से फरमाएगा कि क्या ये तुम्हारी इबादत करते थे? बुत कहेंगे, या अल्लाह, ये मुशरिक थे, हमारी इबादत नहीं करते थे, ये शैतानों की इबादत करते थे। तो वो जो बुत हैं, झूठे माबूद हैं, कयामत के दिन उल्टा अपने पुजारियों के लिए अजाब का सबब बन जाएंगे कि या अल्लाह इनको अजाब दे, ये जो है ये तुझे छोड़ के जो है ये हमारी तरफ मुतवज्जे होते थे, शैतान की इबादत करते थे, ऐ अल्लाह इनको अजाब दे। तो जिन बुतों से इन्होंने तवक्को रखी मदद की, वो उल्टा इनके खिलाफ हो जाएंगे क्यामत के दिन। तो फरमाया कि वो उनकी मदद नहीं कर सकते, ला यस्ततीउना नसरहुम, वो उनकी मदद नहीं कर सकते, बुत पुजारियों की मदद नहीं कर सकते, और ये बुत इन पुजारियों के लिए हाजिर किए हुए लश्कर होंगे, क्यामत के दिन मौजूद लश्कर होंगे जो इनको भी मरवाएंगे। तो ये इस आयत मुबारक के दम्बफुम। अब यहां पर एक बड़ी अहम चीज है जिसका बयान करना बड़ा जरूरी है, वो ये है, इस तरह की जो आयतें मुबारक हैं जिनमें यह बयान होता है कि मुशरिकों ने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिए ताकि इन मुशरिकों की मदद हो, और ये बुत इनकी मदद नहीं कर सकेंगे, इस तरह की जो आयतें हैं ये आयतें नाजिल होती हैं बुतों के बारे में और मुशरिकों के बारे में। बाज़ लोग इन आयतों को जो बुत के बारे में है उसे खुदा के नबियों पे लगा देते हैं, खुदा के वलियों पे लगा देते हैं, और मुशरिकों की जगह वो मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह ताला के मकबूल और प्यारे बंदों को जो हम मुसलमान मदद के लिए पुकारते हैं और उनसे मदद की तवक्को रखते हैं। तो बास लोग ये करते हैं कि वो बुतों वाली आयात जो है वो इन लोगों पर मुंतबिक कर देते हैं कि बुतों की जगह माद अल्लाह नबी वली ले आते हैं, और मुशरिकों की जगह मुसलमानों को, मोमिनों को ले आते हैं जो उनसे मदद की तवक्को रखते हैं। इन आयतों का ये मफहूम लेना, ये बिल्कुल बातें, बिल्कुल बातें। पहली बात तो ये है कि ये आयात जो इस तरह की हैं, ज़्यादातर तो ये मुशरिकीन ने मक्का के हवाले से नाजिल हुई। अब आप खुद गौर कर ले कि जो मक्के के मुशरिक थे वो बुतों को पूजते थे या नबियों वलियों को पूजते थे? वो बुतों को पूजते थे, नबियों वलियों को नहीं। तो लिहाजा जब जिनके बारे में आयत नाजिल हो रही है वो है मुशरिकीने मक्का, जिनको वो पूजते थे वो थे बाकायदा बुत। तो जब आयात नाजिल ही उनके एतबार से हुई हैं तो उनको अल्लाह के नबियों पर और मुसलमानों पर कैसे मुंतबी कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि आप खुद गौर कर लें, मैं चंद चीजें आपके सामने अर्ज करता हूं, आप खुद गौर करें, क्या बुत को मदद कर सकता है? क्योंकि बुत तो ये है ना कि कोई भी आदमी उठे और कुछ बन बना के एक मूर्ति से बना के रख ले उसको, ये बन गया बुत, इसको कह दिया माद अल्लाह खुदा, झूठा खुदा। क्या ये कोई मदद कर सकता है? क्या हम इससे कहें कि पानी दे दे, इससे कहें खाना दे दे, इससे कहें कोई मुश्किल दूर कर, ये कर सकता है? नहीं कर सकता। ना हम इसे कहें कि हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, मुवाहिद हैं। लेकिन क्या ये जो बुत है ये और अल्लाह के नबी, क्या माजल्ला एक जैसे? अब खुद गौर कर लें। कुरान की मैं चंद आयतें आपके सामने पढ़ देता हूँ और उनकी रोशनी में देख लें बुत में और नबियों में फ़र्क है या नहीं। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप अपनी सारी कौम बनी इसराइल के साथ जब मिस्र से निकले, एक मैदान में पहुँचे, मैदान तियाह के अंदर, वहाँ पर कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, पानी का इंतज़ाम नहीं है, आप अल्लाह ताला से दुआ करें हमें पानी अता कर दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ, और जब मूसा ने अपने रब से अपनी कौम के लिए पानी मांगा, फ़क़ुलना, तो हमने कहा اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, ए मूसा अपना आसा पत्थर पे मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा पत्थर पे मारा, فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, अल्लाह ताला फरमाता है कि उस पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। अब आप गौर करें, ये जो 5-6 लाख बनी इसराइल के लोग थे, क्या इनको नहीं पता था कि पानी देना तो अल्लाह ताला का काम है, दुआ कबूल करना तो अल्लाह ताला का काम है, और हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला तो सबकी सुनता है, तो अल्लाह ताला हमें पानी दे देगा। आखिर 6 लाख बंदे दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी सुनेगा। अल्लाह ताला तो एक की भी सुनता है, लेकिन चले वो तो 6 लाख है, 6 लाख बंदा दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उनकी सुनेगा। तो ये क्या बात हुई कि 6 लाख बंदे खुद नहीं दुआ कर रहे, मूसा अलैहिस्सलाम को आके कह रहे हैं कि ए मूसा आप दुआ करें? क्यों? इसलिए कि पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा मजबूत वसीला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं पानी देना था, अल्लाह ने ही पानी देना था, लेकिन वसीला मूसा अलैहिस्सलाम बने। तो सारी बनी इसराइल की कौम ने मजमूई तौर पे मिलके बता दिया कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से अता फरमाएगा, और अल्लाह ताला ने अता कर भी दिया। अल्लाह ताला ने फिर ये नहीं फरमाया कि ठीक है मूसा अलैहिस्सलाम तुमने दुआ कर दी है तो अभी थोड़ी देर में पानी मिल जाएगा, फरमाया कि तू अपना असा मार पत्थर पे। आखिर अल्लाह ताला वैसे भी तो पहाड़ को फाड़ के चश्मे जारी कर देता, लेकिन चूंकि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से पानी मांगा तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से ही पानी अता किया। तो हम जो नबियों वलियों को दरमियान में रखते हैं वो वसीले के तौर पे, जैसे ये पहले पारे की जो आयत मैंने पढ़ी है कि बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से पानी मांगने के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को वसीला बनाया, अल्लाह ताला ने पानी देने के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को वसीला बनाया। तो हम भी अल्लाह के नबियों को, अल्लाह के वलियों को वसीला बनाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ताला से हमें ये दिलवा दें, आप अल्लाह ताला से हमें ये करवा दें। तो ये वसीले का मामला है। अच्छा, एक बात। दूसरा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कि कुरान पाक के अंदर है, ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि ए लोगों, मैं कोड़ियों को शिफा याब कर देता हूँ, कोड़ का मर्ज हो मैं शिफा देता। अल्फाज ये, वह उबरी उल अकमहा वल अबरसा, पैदाशी अंधों को आंखों की रोशनी दे देता हूँ और कोड़ियों को शिफा याब कर देता हूँ, मैं कर देता हूं। अल्फाज देखें, मैं करता हूं। तो अब बताइए कि क्या बुत भी किसी नबीना को बीना कर सकता है? क्या बुत भी किसी कोड़ी को शिफायाब कर सकता है? क्या बुत भी ईसा अलैहिस्सलाम की तरह किसी परिंदे के अंदर फूंक मार के उसमें रूह डाल सकता है? क्या बुत भी किसी मुर्दे को जिंदा कर सकता है? बुत नहीं कर सकता, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कर सकते थे और उन्होंने किया। मुर्दे भी जिंदा किए, अंधे भी बीना किए, कोड़ी भी शिफा याब किए, मूरत के अंदर फूंक मार के उसको बाकायदा परिंदा भी बना दिया। तो फर्क है या नहीं? फर्क है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी मरतबा सहाबा इकराम आए, या रसूलल्लाह पानी खत्म हो गया, या रसूलल्लाह खाना नहीं है, या रसूलल्लाह ये मसला, या रसूलल्लाह ये मसला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहीं भी ऐसी 100 नहीं 1000 हदीसें होंगी। मैं सवाल करता हूं कि क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहीं एक मरतबा भी फरमाया कि भाई मेरे पास क्या लेने आते हो, दुआ तो अल्लाह ताला ने कबूल करनी है, जाओ जाके डायरेक्ट मांग लो? नहीं, सहाबा किराम आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके उस एतिकाद पर कि हुजूर वसीला हैं, मोहर तस्दीक सबत फरमाई, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया। तो नबियों को वसीला बनाया जाता है, वलियों को वसीला बनाया जाता है। अब आप बताइए कि क्या बुत और ये नबी एक जैसे होते हैं? नहीं, एक जैसे होते हैं। अच्छा, इसी तरह क्यामत के दिन, क्यामत के दिन बुत मुशरिकों के बारे में बोल देंगे कि या अल्लाह ان کو تو عذاب ہی دے، ہم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، کیا اللہ کے نبی یہ بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی تو اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نبی تو اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے، جس نے شرک کیا، شرک کیا مطلب خدا مانا، اس کے خلاف نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کلام کریں گے، لیکن ہم تو خدا مان ہی نہیں رہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، ہم کہتے ہیں صرف اللہ معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اللہ نہیں، ہرگز خدا نہیں، ہرگز خدا نہیں، کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم تو ہزار مرتبہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں، خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں، تو جب ہم ان کو خدا کا بندہ کہہ رہے ہیں، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا کہ واتخذوا من دون اللہ آلہا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور خدا بنا لیے، تو ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، تو جب ہم اقرار کر رہے ہیں اور ہم ہزاروں مرتبہ کہہ رہے ہیں، تو پھر کسی پہ الزام لگانا نہیں جی تم خدا ہی مانتے ہو، نہیں جی تم خدا ہی مانتے ہو، تو اس سے بڑھ کر بدگمانی اور بہتان تراشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا بتوں کی جگہ معاذ اللہ خدا کے نبیوں کو رکھ کے وہ آیتیں لگا دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت سارے ایسے کرنے والوں کے جو ہے وہ شر سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔